मेरे प्यारे नौजवान दोस्तों, नमस्कार फ्रेंड्स। आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे इतिहास के कुछ प्रश्नों पर बात करूंगा, लेकिन इससे पहले एक खबर देख लेते हैं जो मुझे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ती है, खासकर मेंस को लेकर। आज के अखबारों में आपने पढ़ा होगा, कल के दूरदर्शन न्यूज पर भी इसकी चर्चा थी, एक बैठक हुई थी जिसमें नशा मुक्त भारत अभियान की योजना रखी गई। बैठक थी खासकर नारकोटिक्स को लेकर के, जो हमारे मादक पदार्थ जो होते हैं उनकी जो तस्करी होती है उसे कैसे रोका जाए। अब देखिए टॉपिक क्या है, मादक पदार्थों की तस्करी। जब आप अपने सिलेबस को देखेंगे पढ़ेंगे तो उसमें आपको मादक पदार्थों की तस्करी जैसा कोई टॉपिक नहीं मिलेगा। हो सकता है कि अगर आप पिछले 2-3 साल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखें तो उस पर भी कोई प्रश्न न पूछा गया हो, और मान लीजिए कि आप अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में आपका निर्णय क्या होगा। डेफिनेटली आपका निर्णय होगा कि नहीं, इससे हमको क्या लेना देना, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन यदि आप ध्यान से उस टॉपिक को पढ़ेंगे या कह लीजिए कि जो न्यूज आइटम है उसे पढ़ेंगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली किसी न किसी रूप में यह लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये जो ड्रग्स की तस्करी है यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और फिर जब आप अपना सिलेबस उठा करके देखेंगे फिर आप पाएंगे कि नेशनल सिक्योरिटी तो बाकायदे आपके सिलेबस में है, और अगर ड्रग्स नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है तो सीधी सी बात है कि यह भी आपके सिलेबस का पार्ट है, राइट। हालांकि यह आइटम बहुत छोटा सा है लेकिन मुझे लगता है कि ड्रग्स पर यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कोई भी मेंस में तो दोस्तों उसका उत्तर आप बकायदे इस छोटे से आइटम से दे सकते हैं, ठीक है। केवल यही सब कुछ नहीं है, आप चूंकि इसकी तैयारी करेंगे तो कुछ बातें आपको पहले से भी मालूम होंगी, जैसे ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए कौन सी एजेंसियां हैं, कौन सा कानून बनाया गया है, किन किन क्षेत्रों से ज्यादातर ड्रग्स भारत में आते हैं, ये सब बातें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। लेकिन इसके तहत जो व्यवस्था की गई है वो बहुत ही खूबसूरत है और अपने आप में इस टॉपिक को बहुत ज्यादा वो संपूर्ण बना देती है। एक समन्वय बैठक थी और उसमें देखिए नार्को समन्वय केंद्र की तीसरी बैठक थी, नार्को समन्वय केंद्र, नार्कोटिक्स समन्वय केंद्र, इसके तहत क्या क्या निर्णय लिए गए हैं। और चूंकि देखिए ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है तो इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, आप अपनी तरफ से सोच करके देखिए। जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं तो देखिए एक इंटरनल सिक्योरिटी होती है, एक बाहर की सुरक्षा होती है। तो डेफिनेटली जो बाहर की सुरक्षा, अगर कोई विदेशी आक्रमण होता है तो उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए हमारे पास डिफेंस मिनिस्ट्री है, रक्षा मंत्रालय है। लेकिन जो हमारी आंतरिक सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी किसके पास होगी, गृह मंत्रालय के पास। तो डेफिनेटली गृह मंत्रालय ने इसकी अध्यक्षता की होगी और सच बात भी है। मैं खासकर देखिए इस अंदाज में आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके पढ़ने का तरीका अगर इस तरीके का हो सका तो आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा, और जैसे ही आपके अंदर सोचने की क्षमता आ जाएगी वैसे ही आप प्री के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके भी बहुत बेहतर तरीके से उत्तर देने की स्थिति में आ जाएंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरों की अपेक्षा अलग तरीके से उत्तर देने की स्थिति में आ जाएंगे। दोस्तों इसलिए मैं इस तरीके से आपसे बातें कर रहा हूं, हालांकि हो सकता है कि आप थोड़ा सा बोर भी हो रहे हो कि क्या बात कर रहे हैं सर, लेकिन मुझे लगता है कि जरूरी है और खासकर इसीलिए मैंने जो ऑनलाइन लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं वो कुछ कुछ इसी अंदाज में है कि स्टूडेंट की जो कैपेसिटी है इनफैक्ट वो बढ़ सके और फिर उन्हें मजा तो आए ही। अब आप देखिए कि इसमें क्या क्या व्यवस्था की गई है। पहली व्यवस्था ये की गई है कि केंद्र से लेकर के और बकायदे अब जिला स्तर पर एंटी नार्कोटिक्स तंत्र विकसित किया जाए, मतलब जिला स्तर पर भी इसके लिए व्यवस्था हो, बहुत अच्छी बात है। मतलब पूरे देश में हो जाएगा और खासकर हमारे लगभग 272 जिलों में यह सबसे बड़ा संकट हो गया है। इसके बाद साथ ही साथ कई एजेंसियां काम करती हैं, इसमें पुलिस भी होगी, इसमें हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज भी होती हैं, इसमें कस्टम एक्साइज वाले भी होते हैं, कई तरह की एजेंसीज होती है ना, तो इनके बीच में समन्वय स्थापित हो सके इसके लिए पोर्टल बनाया जाए। ताकि फटाफट फटाफट कोऑर्डिनेशन इनके बीच में हो सके और ये मिल करके इसका मुकाबला कर सके। फिर आम जनता को भी शामिल किया जाए इसमें, मतलब अगर किसी को पता लग जाता है कि यहां पर ड्रग की तस्करी हो रही है, यहां यहां ड्रग्स बेचा जा रहा है। आजकल देखिए किस, खासकर जो हमारे युवा हैं उन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा ड्रग्स बिकने लगी। अगर उड़ता पंजाब फिल्म आपने देखी हो तो आप देखिए कि पंजाब में तो कितना बड़ा संकट उठ करके खड़ा हो गया है ड्रग्स का। और फिर आपने अगर अभी एक फिल्म आई है बॉब विश्वास, उसमें भी यही दिखाया कि किस तरह से जो स्कूल और कॉलेज के बच्चे हैं वहां तक ड्रग्स पहुंचाने की कोशिश की जाती है और फिर जब उन्हें इस लत पड़ जाती है तो फिर कहना ही क्या, उनका बिजनेस चलने लगता है। तो आम लोगों को शामिल करने के लिए भी बकायदे हेल्पलाइन नंबर शुरू करने की बात कही गई है ताकि लोग इन्फॉर्मेशन दे सके और उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जब आम जनता शामिल हो जाती किसी के खिलाफ इस तरह के अभियान में तो फिर सरकार की ताकत बहुत बढ़ जाती है। हमारे बंदरगाहों पर सामान उतरता है, बड़े बड़े कंटेनर उतरते हैं, कहा जाता है कि उनमें तस्करी का सामान आ जाता है, ड्रग्स, मतलब सामान तो कुछ दूसरा है, आ रहा है हमारे पास पता लगा दालें और उसमें एक दो बॉक्स अपना ड्रग्स के रखे हुए, तो बकायदे उनकी स्क्रीनिंग की जाए, स्कैन जब किया जाएगा तो पता लग जाएगा कि इसमें इसके अंदर क्या है। और राज्यों में खासकर विशेष रूप से जो प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड होते हैं, जो कुत्ते हैं प्रशिक्षित कुत्ते जो बकायदे सूंघ करके पता लगा लेते हैं कि इसके अंदर इस तरह के ड्रग्स हैं, तो इस तरह का तंत्र विकसित किया जाए। और सीधी सी बात है कि जब इस तरह का तंत्र विकसित होगा तो डेफिनेटली जो तस्करी है उस पर रोक लगाई जा सकेगी। आपने पढ़ा है क्रिप्टो करेंसी के जरिए भी होने लगी है, तालिबान की तो जो कमाई है वो अफीम की तस्करी से ही ज्यादातर, ये सारी बातें आपको मालूम है। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी है क्योंकि पंजाब में अभी एक इस तरह का गिरोह आप यूं कह लीजिए कि पकड़ाया है, उसके खिलाफ अभियान चल रहा है, तो मेंस के लिए आप इसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मानकर चल सकते हैं। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, इतिहास के प्रश्न। यहां मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा माफीनामे के साथ में, और दोस्तों वो बात यह है कि देखिए मैं इतिहास की चर्चा कर रहा हूं, इतिहास में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनकी चर्चा कर रहा हूं, लेकिन मेरा अनुरोध है कि आप इसे इतिहास तक सीमित मत रखिएगा। ये तो मेरे पास चूंकि एक पेपर का जो सेट था बी ग्रुप का, उसमें इतिहास से ही प्रश्नों की शुरुआत की गई थी तो मैंने इतिहास से शुरू कर दिया है, बीच बीच में मैं दूसरे विषयों पर भी आऊंगा। सच पूछे तो ये जो तरीका मैं आपके सामने रख रहा हूं वो केवल अलग अलग वे पगडंडियां हैं या वे छोटे छोटे रास्ते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं, यानी कि जो प्री एग्जामिनेशन में आंसर तक पहुंचने के जो रास्ते होते हैं वो कोई राजमार्ग नहीं है कि एक ही है, रेल मार्ग भी नहीं है कि एक ही है, कई छोटी छोटी पगडंडियां होती हैं जो दिखाई भी नहीं देती लेकिन वो होती हैं। तो उन पगडंडियों को आप कैसे पहचाने, वो कौन कौन सी पगडंडियां हैं, इसीलिए मैं इतने विस्तार से इनके बारे में बातें भी कर रहा हूं। अदरवाइज मैं बहुत जल्दी जल्दी बातें करके निपटा सकता हूं कि तो आपको मिल ही जाते हैं कि आंसर शीट आपको मिल जाएगी, बकायदे गूगल पर चले जाइए आप देख करके निशान लगा सकते हैं, लेकिन उससे फायदा क्या होगा। तो मैं इनफैक्ट आपसे पगडंडियों का परिचय करा रहा हूं, इसलिए पुराने जमाने के लोग जब चिट्ठियां लिखा करते थे पोस्ट कार्ड में तो आखिरी में लिखते थे थोड़ा लिखा ज्यादा समझना, अपने पिताजी से या दादाजी से आप पूछ सकते हैं थोड़ा लिखा ज्यादा समझना। और मुझे लगता है कि यदि आप सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हैं, हिंदुस्तान के सबसे टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेसी में शामिल होना चाह रहे हैं तो आप में भी ये क्षमता होनी चाहिए थोड़ा लिखा ज्यादा समझना, थोड़ा सुनना ज्यादा समझना, मेरे बारे में आप ये कह सकते हैं। तो दोस्तों अपने दिमाग को खुला रखिएगा ताकि बातों को आप बहुत विस्तार के साथ समझ सकें, इनसाइट डेवलप कर सकें जिसे अंतर्दृष्टि कहते हैं, तब देखिए कि एग्जाम आपके लिए कितना सरल हो जाता है। अब मैं पांचवें प्रश्न पे आता हूं, बी सेक का पांचवां प्रश्न, आप देखिए कि ये क्या है, इसे हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में मेडिवल इंडिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही है, ठीक है, आरोही क्रम में सही है, आरोही क्रम का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर्स, बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि जो सबसे पहले है वो छोटा होगा, जैसे मान लीजिए तहसील, जिला और राज्य। अब आप देखिए ये आरोही, तहसील छोटा है, तहसील से बड़ा होता है जिला, जिला से बड़ा होता है राज्य, बिल्कुल उसी पैटर्न पर यह प्रश्न पूछा गया है। अनुक्रम है ए बी सी डी है, परगना सरकार, सूबा सरकार, परगना सूबा, सूबा सरकार, परगना, इस तरह से दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। अब सवाल यह है कि इसे हल कैसे करेंगे, क्या कोई पगडंडी है इसके लिए। पहली बात, सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि वो अपने समय से वाकिफ हो, उसकी आंखें खुली हो और कान भी खुला हो और दिमाग भी खुला हो। दोस्तों, पिछले एक साल से ज्यादा वक्त हो गया है जब एक सीरियल आ रहा है और ये बहुत पॉपुलर सीरियल है, अहिल्याबाई, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई, अहिल्याबाई पर सीरियल आ रहा है और बहुत ही पॉपुलर है और उसके बारे में बकायदे अखबारों में भी चर्चा होती है। अहिल्याबाई, अहिल्याबाई में जो इंदौर के शासक हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें सूबेदार कहा जाता है, सूबेदार। और वो मालवा राज्य के शासक हैं, मालवा एक राज्य है और वो सूबेदार है। सूबेदार का मतलब क्या हुआ, सूबे का मालिक, जैसे दुकानदार कहते हैं ना, तो दार का मतलब होता है मालिक, दुकान का मालिक दुकानदार, थाने का मालिक थानेदार, तो सूबे का मालिक सूबेदार, जो राज्य के बराबर है, मालवा राज्य के प्रमुख सूबेदार। उनके बेटे को कहा जाता है छोटे सूबेदार, छोटे सूबेदार। अगर आपने गलती से एक आध दो बार देख लिया हो सीरियल, तो अब आप देखें कि अगर ये पकड़ आप में है तो ये आपके लिए बिल्कुल सरल हो जाएगा, और अगर ये नहीं है तब क्या करेंगे, यहां अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। दोस्तों, ये जो विभाजन है, विभाजन क्या क्रम है कह लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन का, ये किताबों में है, बकायदे है, लेकिन बहुत सारे हैं। मध्यकालीन में आप देखेंगे तो ये तो मुगल शासकों का है, और भी दूसरे हैं। आप साउथ इंडिया में जाइए तो वहां भी अलग अलग तरह के इस तरह की इकाइयां थी, उनके नाम अलग थे, इकाइयों का स्वरूप लगभग लगभग यही रहा है, लेकिन उनके नाम अलग अलग रहे, नाडू, इनाडू, इस तरह के नाम रहे हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि जब आप अगर मध्यकाल को पढ़ रहे हैं और आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, सिविल सर्वेंट बनने के बाद आप एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे, तो आपके पास अपने मध्यकाल के एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी तो हो। मैं यहां याद दिलाना चाहूंगा विशेषकर अपने ऑनलाइन के स्टूडेंट्स को कि आप अगर मेरा लेक्चर सुन चुके होंगे तो स्पेशली मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और हम लोगों ने जो आपको पॉइंटर्स प्रोवाइड किए हैं रिवीजन के लिए जो रिटन फॉर्मेट में, उसमें आप देखिए कि बकायदे इसका उल्लेख है। ये दूसरा तरीका है कि आप पढ़ते समय इतनी सतर्कता बरतें। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस 27 मार्च से 10 अप्रैल के बीच होने वाली हैं, उसके लिए दीपिका तिवारी ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनका गांव है मतरिया और जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश से। दीपिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।